नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा में इस समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा जारी है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति और दिशा प्रदान की।
यह वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दिया था। वंदे मातरम वह गीत है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने भाषण में बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम के पीछे भावना सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करना है। संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार से अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये उपकर नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये उपकर केवल हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर श्री नायडू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। श्री नायडू ने बताया है कि सरकार ने पूरे देश में हवाई किराए की सीमा तय कर दी है। सरकार ने दूरी के आधार पर 4 मूल्य निर्धारण स्लैब बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नियमित सीजन में हवाई किराए की सीमा पर लगातार नजर रख रही है। भारत ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मजबूत करने के लिए भारत विरोधी उग्रवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटेन सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से अवैध धन के लेनदेन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में श्री जायसवाल ने चीन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों का सम्मान करने का आह्वान किया। श्री जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने वाली पाकिस्तान की टिप्पणी को भी खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। सरकार ने आज ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए एक अभिरुचि पत्र सौंपा है। नई दिल्ली में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक में श्री प्रधान ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय क्यूवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष 20 संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और AI तैयार पीढ़ी का निर्माण करना देश की प्राथमिकता है। दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर और 1 मौलवी की NIA हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। इन चारों आरोपियों डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल राठौर, डॉक्टर शाइना सहीद और मौलवी इरफान अहमद व्याक को 10 दिन की NIA हिरासत में लिया गया था। NIA ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसे सफेदपोश आतंकवाद मॉड्यूल बताया। खेलों में पुरुष हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज रात 10:30 बजे से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में खेला जाएगा। भारत ने पहले मुकाबले में कल दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।